नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। साल 2023 के आखिरी कारोबार सत्र के दिन घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स सप्ताह के आखिरी सत्र के दिन आखिर में 170.12 अंक लुढ़क कर 72,240.26 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी 47.3 अंक की गिरावट के साथ 21,731.40 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी 216.3 अंकों की गिरावट देखी गई। ये लुढ़क कर 48,292.25 के लेवल पर बंद हुआ। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा। टाटा ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स ने इस साल सेंसेक्स के मुकाबले अपने निवेशकों को डबल रिटर्न दिया है। आपको बता दें कि इस साल सेंसेक्स ने 16.25% का रिटर्न दिया है। वहीं टाटा समूह की कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप 32% बढ़ गया। ये सेंसेक्स की दर से लगभग दोगुना है। इसका फायदा टाटा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को हुआ है। टाटा सन्स के चेयरमैन इंद्र चंद्रशेखर ने नए साल के लिए समूह के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा कि समूह के लिए साल 2023 काफी संतोषजनक रहा और इसकी सभी कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण सेंसेक्स की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमारे वित्तीय परिणामों में नवाचार और प्रगति के बीच हमारी प्रतिबद्धता को इतनी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते देखना बेहद संतोषजनक रहा है। सोने की कीमतों में कारोबारी सत्र में उछाल देखने को मिला है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड का रेट 63,640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले 24 कैरेट का रेट 63,223 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी का दाम 74,000 रुपये प्रति किलो के करीब बना हुआ है। IBJA के मुताबिक 22 कैरेट गोल्ड का रेट 62,120 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट गोल्ड 56,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 51,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसके अलावा 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 41,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत वृद्धि की बढ़ती संभावनाओं के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष किसी भी जोखिम से निपटने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है। दास ने RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 28वें अंक की भूमिका में लिखा है कि टिकाऊ और भरोसेमंद स्तर पर मूल्य स्थिरता हासिल करना, मध्यम अवधि में कर्ज के स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करना, वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत करना, विकास के नए अवसर पैदा करना तथा समावेशी और हरित वृद्धि को बढ़ावा देना नीतियों के स्तर पर प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नई ऊंचाई पर है। चालू वित्त वर्ष में 9 अक्टूबर तक भारत का सालाना आधार पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21.82% बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपए हो गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को इसके आंकड़े जारी किए हैं। IANS की खबर के मुताबिक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से संकेत मिलता है। सकल संग्रह 11.07 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सकल संग्रह से 17.95% ज्यादा था। आंकड़े बताते हैं कि सकल राजस्व संग्रह के मामले में कॉरपोरेट आयकर की ग्रोथ रेट 7.30% और व्यक्तिगत आयकर की ग्रोथ रेट 29.53% रही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।